अब आयत नंबर 121 हमारे सामने है इस वक्त। अगर आप इस आयत को खोल के देखते हैं, इससे आगे कई रुकू तक गज़वे उहद का तذکرہ चल रहा है। गज़वे उहद क्या थी? असल में मुसलमानों का एक ट्रेनिंग सेशन था। थोड़ी सी आयतें पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते हैं, और इसी में इंशाल्लाह हमारे आज के इस पारे का जो मेन थीम है वो भी नजर आएगा आपको। وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के सामने इस मौके का जिक्र करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और उहद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जा बजा मामूर कर रहे थे। अल्लाह सारी बातें सुनता है और वो नहायत बाखबर है। याद करो जब तुम में से दो गिरोह बुजदिली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह इनकी मदद पर मौजूद था, और मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। आखिर इससे पहले जंगे बदर में भी अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि इस वक्त तुम बहुत कमजोर थे। बस तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो। उम्मीद है कि अब तुम शुक्रगुजार बनोगे। यहाँ आप देखिए कि जो चीज़ आपके मेरे सामने है वह इस गदौता मैदाने ओहद के लिए निकलने के लिए नबी सल्लम सुबह सुबह अपने घर से निकले थे, और उस वक़्त रिवायात से पता चलता है कि आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में थे, जो आपकी मनपसंद बीवी थी, और आपकी फितरी सी ख्वाहिश होती थी कि मैं उनके साथ वक्त ज़्यादा गुजारूँ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने घर से निकले और क्या सोचकर निकले कि अल्लाह के दीन को प्रमोट करूँ। ये है आज की हमारी टाइम मैनेजमेंट, सुबह के वक्त का सही इस्तेमाल करना। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो वक्त की कमी का शिकार हैं, या कम से कम उसका इजहार करते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है कि आज हमारे वक्त के अंदर कमी क्यों है? क्योंकि हम सुबह के वक्त को ज़ाया कर देते हैं। आज देखा जाए तो अमूमी तौर पे और ख़ास तौर पे अगर इस चीज़ को देखना है तो हम अपने बैक होम्स में जाकर देखें कि सुबह को देर तक सोने की आदत है कि नहीं है? वो वक्त जिसमें बरकतें थी, जिसमें खैर थी, वो वक्त हम इस तरह से ज़ाया करते हुए दिखते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है कि वो वक्त जो कीमती तरीन वक्त था दिन का वो चला गया। मैं इस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ूंगी कि जब हम पेपर्स देते थे 3 घंटे का टाइम होता था। आपको पता है कि अगर वक्त से पेपर शुरू किया जाए और शुरू से मैनेज कर दिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आप उसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अगर शुरू का 1 घंटा ज़ाया हो जाए तो एंड पे तो इंसान सिर्फ प्रेशराइज हो जाता है, कुछ और नहीं होता। बेस्ट टाइम ये पारे के अंदर भी मैं देखती हूँ माशाल्लाह, जिस वक्त भी हमारा पारा शुरू से अल्लाह के हुक्म से टाइम पे शुरू हो और कोई टेक्निकल इशू ना आए तो उस दिन मैं खुद पढ़ाते हुए इतनी बरकत महसूस करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ आयतें छोड़ दी हैं, ये कैसे हो गया पूरा, लेकिन एक बरकत है। तो ज़िंदगी का एक असूल बनाएं आज के दिन के लिए, जो मेरी आपकी अपने लिए टिप क्या है कि हमने जल्दी उठना है। अब जल्दी उठने के लिए करना क्या पड़ता है, चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी इस सोच के साथ कि मेरे लिए भी सदका जारिया बने और आप जिसको बताएं वो आपके लिए भी सदका जारिया हो। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और इसके फ़वाद जानना चाहते हैं तो ये बातें आपको फ़ायदा देंगी। रात देर तक जागते रहने और सुबह देर से बेदार होने की ख़राब आदत अब हमारे तर्ज़ ज़िंदगी का एक आम हिस्सा बन चुकी है, और हम कभी ये जानने की ज़हमत भी नहीं करते कि ये बुरी आदत हमें क्या तिब्बी नुकसान पहुंचा रही है, या फिर इस आदत से छुटकारा हासिल करके हम कितने बड़े अनमोल फ़वाद हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि सुबह जल्दी कैसे उठा जा सकता है, इसके क्या फ़वाद हैं, और सुबह जल्दी ना उठने के क्या नुकसान हैं। पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि इसकी ज़रूरत है? अक्सर माओं का शिकवा ये होता है कि बच्चे सुबह देर तक सोते हैं और ख़ास तौर पे वीकेंड के दिन। तो पहली बात देखिए कि नंबर एक ये है कि अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, ये पक्की बात है, ताकि आपकी नींद पूरी हो और आप सुबह जल्दी उठ सकें। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में ग्लैंड रखा हुआ है जिसको पाइनल ग्लैंड कहते हैं। इस इंसानी जिस्म का हयातियाती घड़ियाल भी कहते हैं। हयातियाती कहते हैं जीना, यानी हमारे जिस्म की घड़ी कहते हैं उस ग्लैंड को जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रखा हुआ है। और ये किस तरीके से काम करता है? ये हमारे बसरी असाब से मुंसलिक होता है। ये इतना छोटा होता है जितना मटर का दाना, यानी इतना सा एक छोटा सा ग्लैंड अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर रखा हुआ है। हर रोज ईशा के बाद ये ग्लैंड एक मादा तैयार करना शुरू कर देता है जिसे मिलाटोनिन कहते हैं, जो खून की नालियों में बहता है और जिस्म को कैंसर से बचाता है। ये सिर्फ अंधेरे में काम करता है, अगर महज आंख ही रोशनी में रहे तो भी ये काम नहीं करता, क्योंकि इसे ऐसे लगता है कि अभी रात नहीं हुई। फिर अगर आप रात को भी रोशनी में ही रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप खुद को कुदरती वैक्सीन से महरूम कर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने रात को आसार ख़त्म किए और रोशन दिन बनाया। बात वाजे हुई? रात को जागने वाले इस ग्लैंड से फ़ायदा नहीं उठा सकते, और जो हमारी जिस्म में कैंसर के खिलाफ जो रेजिस्टेंस पैदा होनी होती है वो नहीं होती। बदकिस्मती से हमने आजकल रात के आसार को दिन की निस्बत ज़्यादा देखने वाला बना दिया। हम रात पर जागते रहते हैं और सारा दिन सोते हैं, और कैंसर के खिलाफ इस कुदरती वैक्सीन से महरूम रह जाते हैं। रात को इसलिए भी जल्द सो जाइए क्योंकि अंधेरा फैलने के बाद आपका जिस्म अपनी मरम्मत का काम शुरू कर देता है। आपने दिन भर में जो कुछ खाया पिया होता है, काम करके जिस्म को जो थकन मिली होती है और अंदर तोड़ फोड़ हुई होती है, इसकी मरम्मत रात के वक्त होती है। यानी जैसे कुछ अरसा मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है ना, लोग कहते हैं जी समर में हम अपनी बिल्डिंग को रेनोवेट करेंगे, तो इसी तरह हमारी बॉडी की रेनोवेशन रात को होती है ताकि हम उस वक़्त उसे फ़ायदा उठा सकें। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आप चाहे कितने ही विटामिन और मादनियात इस्तेमाल करें, लेकिन ये मरम्मत फिर भी ज़रूरी है। रात भर मरम्मत के बाद सुबह आपके जिस्म में नए हार्मोन और हुलिये बनते हैं जो आपको अगले दिन के कामों और मकासद को पूरा करने के लिए तैयार करते हैं। इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए। रात को किस वक्त सोना ज़रूरी है, इससे अहम यह है कि आप सुबह किस वक्त उठना चाहते हैं। सोने के बरक्स उठने का वक्त मुकर्रर कर लें और रोज़ सुबह उसी वक्त उठें। आप सुबह सवेरे उठेंगे तो रात को नींद भी जल्दी आ जाया करेगी। रात को जल्दी सोने से नींद का दौरानिया दुरुस्त रहता है और आप सुबह हशाश वशाश रहते हैं। बात वैसे, यदि रातों को जल्दी सोना हल है, दूसरा हल क्या है? सुबह जल्दी उठने के लिए दोपहर को कैलूला की आदत डालें। मसलन जैसे आज भी आप देखिए रोजे से, अभी यहाँ से जब फारिग होंगे घर जाएंगे, अभी असर की नमाज में बहुत टाइम होगा, जोहर आप इधर पढ़ चुके, सुन्नतें अदा कीजिए, घर में जाएं, बच्चे आए उनको थोड़ा सा खिलाएं पिलाएं, सबको साथ लेकर सो जाएं। मैंने इस रमज़ान से पहले इसी दौरे कुरान के टाइमिंग को नज़र में रखकर एक पूरा टाइम मैनेजमेंट प्लान दिया था एक दर्स के अंदर, तो उसमें ये जो वक्त है अब यहाँ से आपका घर जाने का, 1 घंटा बच्चों को दें, खिलाएं पिलाएं, उनको टाइम दें, फिर उन सबको साथ लेकर सो जाएं। तो कैलूला बहुत ज़रूरी होता है। दोपहर को आधे से 1.5 घंटे तक कैलूला कीजिए। कैलूला यानी दोपहर को आराम करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और सलफ सालेहीन का भी अमल रहा है। अफसोस के इस सुन्नत को आज हम तकरीबन छोड़ चुके हैं, सिवाय मदारस के इस सुन्नत पर अब अमल कहीं नहीं दिखता, यानी मदारस में सोने का इख्तमाम करवाया जाता है, बाकी नहीं है। तीसरी चीज़ जो आपके मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी सुबह उठने के लिए, और वो क्या है? सुबह उठने के लिए किसी दूसरे की मदद हासिल करें। अगर आपसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता तो अपने किसी करीबी दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप या बेगम साहिबा को आपको सुबह को उठाने का कहें, और अगर आप इनसे पहले उठ जाएं तो इन्हें भी फजर के लिए उठाइए और अपनी नमाज के साथ साथ इनकी नमाज का भी अजर हासिल कीजिए। तो किसी की मदद ले लें। और आजकल तो माशाल्लाह अलार्म ही बहुत है। कल मैंने आपको सुनाया था एक न्यू मुस्लिम का वाकया कि कैसे उन्होंने खुद को फजर के लिए तैयार किया था, तो उससे भी फ़ायदा उठा लीजिए। चौथी चीज़ क्या है? तिलावत कुरान और मसनून अस्कार का अहतमाम कीजिए। कोशिश करें कि सोने से पहले कम से कम एक रुकू या एक छोटी सूरत ही पढ़ लीजिए। इससे आपको सुबह नमाज फजर के लिए उठने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा रात को सोने से पहले ऐसे अस्कार जो किसी सही हदीस से साबित हों, इनका विर्द भी अपनी रोज़ाना की रूटीन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से इंसान शैतान से दूर रहता है और शैतान ही तो हमें देर तक सुलाता है। तो इंशाल्लाह जब ये पड़ा होगा तो शैतान हमसे दूर रहेगा। पांचवी चीज़ यह है कि अलार्म का इस्तेमाल कीजिए। सुबह जल्दी उठने के लिए आप अलार्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन तो हर एक के पास है, बस सुबह उठने के लिए अलार्म से मदद लीजिए। लेकिन चंद बातें हैं, और वो क्या है कि मुख्तसर वक्फे के बाद अलार्म बजाने वाले बटन, जैसे इंग्लिश में स्नूज कहते हैं, इसको भूल जाएं और अलार्म की पहली घड़ी पर उठ जाएं। जब हम 5 अलार्म लगाते हैं ना तो आपको हम 5वें पे फिर उठते हैं, हमारे दिमाग को ये पता होता है कि अभी इसके बाद एक और बोलना है, एक तीसरा। आदत बना लीजिए कि पहली ही बेल पे उठने की आदत करें। अगर आपको 5 बजे उठना है तो 4:30 की बजाय 5 बजे का ही अलार्म लगाएं और अलार्म बजते ही उठ जाएं। सुनूस बजाय फ़ायदा देने के आपके लिए नुकसान दे, जाहिर है इससे आपकी नींद में खलल होता रहेगा, आप सोएंगे, अलार्म फिर बज उठेगा, फिर उठेंगे, फिर जागेंगे, इससे सर दर्द, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और ऐसी शिकायत पैदा हो जाएंगी। दूसरी बात है कि अलार्म को अपने से थोड़ा सा दूर रखें, इतना दूर रखें कि आपको इसे बंद करने के लिए बिस्तर से उठना पड़े। करीब रखेंगे तो बटन दबाने से अलार्म बंद होगा, फिर से सो जाएंगे, तो आपका जल्दी उठने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा। एक साहब का कहना है कि मैं अपने अलार्म को बाथरूम में बेसन के साथ शेल्फ पर रख देता हूँ, और जब मैं अलार्म बंद करने के लिए सुबह उठता हूँ और अपने आप को बेसन के सामने पाता हूँ तो कहता हूँ कि अब क्या मजीद सोना, आप वजू की और नमाज के लिए तैयारी शुरू कर दी। लिहाजा आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर छठी चीज़ क्या है कि सुबह जैसे आंख खुले दोबारा सोने की कोशिश ना करें। ये बहुत बड़ा शैतान का वार है, 5 मिनट सो लूँ और उस वक्त जितनी हमें खुशी होती है घर में एक बाथरूम होने की, वो पूरा दिन नहीं होती। और उस वक्त जितने हम जेनरस होते, नहीं नहीं पहले आप जाइए, सारा दिन पहले मैं, और उस वक्त मियाँ से कहेंगे पहले आप जाइए, हाँ, ताकि मैं और सो जाऊँ। तो इसे अवॉइड कीजिए। सबसे पहले सोकर उठने की दुआ पढ़ लीजिए, गहरा सांस लीजिए, इससे आपके दिमाग को ऑक्सीजन फ्राहम होगी। आंखें मलें, साथ ही पूरे जिस्म पर हाथ फेरें, एक भरपूर अंगड़ाई लें। अंगड़ाई जिस्म में खून की रवानी को तेज करती है। रात सोने से पहले अंगड़ाई लेना नींद लाने में मुआविन, जबकि नींद से उठने के बाद सुस्ती दूर करने में मददगार होता है। हरकत करें, नींद से उठने के बाद बिस्तर पर ना लेटे रहें बल्कि उठकर हरकत करें। कमरे में खिड़की हो तो इसे खोलकर सुबह का ताज़ा हवा लीजिए और फ्रेश हो जाएं। उठकर वुजू कीजिए और इससे आपकी नींद मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगी। और याद रखिए, उठने के बाद कम से कम अपने काम निपटाने तक फोन को हाथ न लगाएं। मसला क्या, फोन पे अलार्म लगाने का, कि अलार्म बंद करते ही साथ आप मैसेज भी चेक करने लगते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, वो मैं इंशाल्लाह आज एक और दिन सुनाऊंगी कि सुबह उठने के बाद 7 काम क्या करने चाहिए। लेकिन याद रखिए कि वक्त की बरकत क्या है, कि हम अपने वक्त का, सुबह का वक्त इस्तेमाल बहुत ही अच्छा करें, और सुबह जल्दी उठने से इंशाल्लाह आपके वक्त में बरकत होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ये अबू दाऊद की रिवायत है। ए अल्लाह, मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा। तो वाकई सुबह के वक्त में बरकत होती है, हर काम ढंग से होता है, और इसकी एक वजह क्या है कि हम फ्रेश होकर उठते हैं, हमारे अंदर एनर्जी। दूसरी बात है, वो सारे डिस्ट्रैक्शन करने वाले तो अभी सो रहे हैं, तो अच्छी बात है कि आप अकेले में अपने काम सारे कर लेते हैं और बोरियत भी नहीं होती, आप रिलैक्स्ड होते हैं। सुबह जल्दी उठने से आपका दिमाग भी अच्छा काम करता है, परेशानियां भी कोई नहीं होती। ये अलग बात है कि आप ख्वाबों में भी आपको परेशान होने की आदत हो तो वो फिर आपका अपना मसला है, वरना ये वक्त बेस्ट होता है लिखने का, पढ़ने का, याद का। कहते हैं कि इस वक्त मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि सारे दिन में 2 घंटे में जो पढ़ा होता है, वो इस वक्त सिर्फ आधे घंटे में पढ़ना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो आपके मेरे लिए मैं सुबह के वक्त में बरकत दे, और इस कल्चर को आम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने इसको आम ना किया तो फिर हमारे लिए खतरा होगा। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में सुबह जल्दी ना उठने के नुकसानात भी बताऊंगी। लेकिन यहाँ आप देखिए कि हर काम के लिए उठना आसान लगता है। आपके फेवरेट मेहमान आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट से पिक करना आसान है। आपके बच्चे सारा साल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के लिए सुबह 6 से 7 बजे उठ जाते हैं, इट्स ओके, बट वीकेंड पे वो सारे ही पोल खुल जाते हैं। नबी सल्लम का उठना इस वक्त किस काम के लिए था? वह इस गदा उतमिन अहली का तुबव्विल मोमिनीन मकायद लिल किताल। ये है असल में क्रीम ऑफ द थिंग, कि अल्लाह के दीन के लिए सुबह उठना, अल्लाह के नाम पे उठना। और नबी सल्लम की इसमें बेहतरीन मैनेजमेंट भी दिख रही है कि किस तरीके से आपने साथियों को तैयार किया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए ये सारी हिकमतों वाले काम आसान कर दे और हम नबी सल्लम की बाकी सारी सुन्नतों पे अमल कर सकें इसी के साथ। फिर आगे फरमाया आयत नंबर 124, इस तकूल लिल मोमिनीन, ए नबी याद करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफ़ी नहीं है कि अल्लाह 3,000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे? बेशक अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते हुए काम करो तो जिस आन दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़ आएंगे, इसी आन तुम्हारा रब 3,000 नहीं 5,000 साहिब निशान फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। ये बात अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बता दी कि तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं। पता हो नुसरत जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से है, जो बड़ी कुव्वत वाला और दानाबीन है, और ये मदद वो तुम्हें इसलिए देगा ताकि कुफर की राह चलने वालों का एक बाजू काट दे, या इनको ऐसी जलील शिकस्त दे कि वो ना मुरादी के साथ पसपा हो जाएं। अब देखिए कि गज़वे उहद अपनी जगह एक बहुत बड़ी बात थी। मसलन आप कह सकते हैं कि गज़वे उहद जो थी वो शिकस्त को कैसे फेस किया जाए, नाकामियों को कैसे फेस किया जाए, इसका तरीका सिखाती है। बदर में कामयाबी हुई थी, पीछे भी पढ़ा है, आगे सूरह अनफाल में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बदर में एक इतनी बड़ी कामयाबी थी जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री थी। खुशियों के वक्त में, सक्सेस के वक्त में क्या खराबियां पैदा होती हैं, वो सारी सूरह अनफाल में आएंगी। यहाँ इस पूरे हिस्से में अब जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या है कि जब तुम्हें अल्लाह के रास्तों में नाकामियां हों, शिकस्तें हों, नतायज वो ना निकले जो निकलना है, तो क्या करना है? और याद रखिए, जब भी दीन के नाम पे नाकामी होगी तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, साथियों में फूट पड़ जाती है। कोई एक के ऊपर जिम्मेदारी डालेगा, कोई दूसरे पर डालेगा, तीसरा कहेगा मैंने तो पहले ही कह दिया था, चौथा कहेगा मैं तो अंदर से खुश ही नहीं था, मैं तो ये था। तो आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस सारे के अंदर कि टीम वर्क की अहमियत का भी पता चलता है, रसूल की इताअत की अहमियत का पता चलता है। चंद की गलती सारे ग्रोह को बाद दफा नुकसान दे देती है। अल्लाह ताला ने यहाँ ओहद का लाइव तजुर्बा करवा के ये भी सिखा दिया कि नबी सल्लम के दुनिया से जाने के बाद जो हालात पेश आने वाले हैं उसके लिए अभी से तैयारी करो। फिर सातवीं चीज़ इधर हम जो सीखने वाले हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है। जब तक कोई ग्रोह, कोई जमात, कोई फर्द, कोई इदारा ऑर्गेनाइज नहीं होगा वो कभी ग्रो नहीं करेगा। लिख लीजिए, ना टीम वर्क के बगैर बड़े काम होते हैं, ना नबी सल्लम की सुन्नतों को सामने रखे बगैर बड़े काम होते हैं, और ना ऑर्गेनाइजेशन के बगैर। हैपहैज़र्ड कोई काम हो, जल्दी जल्दी हो रहा है, कभी किसी ने कर दिया, कभी किसी ने कर दिया, बात नहीं होती है। फिर एक और जो चीज़ हमें इस गज़वे उहद के तनाजर में भी इंशाल्लाह देखनी है कि गज़वे उहद में शिकस्त हो रही थी तो अल्लाह ताला यकीन दिला रहे हैं कि बदर में तो अब्दुल्ला बिन उबई भी साथ नहीं था। 300 लोगों को लेकर अब्दुल्ला बिन उबई जो था उहद के मैदान में पीछे हो गया। ऐसे वक्त में मुसलमानों को एक बहुत बड़ा झटका लगा। आप सोचिए, 1/3 ऑफ टीम ही टूट जाए, 1,000 में से जब 300 निकले तो पीछे क्या रह गए, 700। तो कुछ सहाबा कमजोर हो गए, अच्छा वो साथ नहीं देंगे तो फतह तो होगी नहीं। अल्लाह ने दिखा दिया बदर में कौन सा अब्दुल्ला बिन उबई था। और याद रखिए, जो लोगों पे नजरें रखते हैं कि उनकी वजह से कामयाबी होगी, वो शिर्क करते हैं, और जो लोगों को वजूहात समझ कर नाकामियों का सेहरा उनके ऊपर डाल देते हैं वो भी शिर्क करते हैं। हार भी अल्लाह के हाथ में, फतह भी अल्लाह के हाथ में, कामयाबियां नाकामियां अल्लाह दिलवाता है, मेरा आपका काम सिर्फ काम करना है, वह तवक्कल अल्लाह। तो आप कह सकते हैं कि ओहद जो है खूबसूरत ट्रेनिंग कोर्स है। आइए थोड़ा सा भी इसके मजीद चीज़ों को पढ़ें, और इसी में अब आपको जो मैंने बातें बताई हैं अगली आयतों में इसके प्रैक्टिकल इशारे मौजूद हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, आयत नंबर बोलिए 126, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے ان کو معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ جملے نکل گئے، کہا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے دانت کو زخمی کر دیا؟ تو اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، क्योंकि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है अल्लाह दे देता है। और ज़मीन और आसमान में जो कुछ है इसका मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे अजाब दे, वो माफ़ करने वाला और रहीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अदाफ़ा मुदाफ़ा, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। इस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई, और अल्लाह और रसूल की इताअत करो, तवक्कुह है कि तुम पर रहम किया जाएगा। आप यहाँ देखिए कि गज़वे उहद में जो वक्ती भगदड़ मची थी उसकी वजह माल की मोहब्बत थी। माल गनीमत को देखकर वो सहाबा जो के एक टीले पे मुकर्रर किए गए थे इस वाज़े इंस्ट्रक्शन के साथ कि फतह हो के शिकस्त तुमने ये जगह नहीं छोड़नी, लेकिन उन्होंने समझा के जंग खत्म हो गई। जैसे अक्सर प्रोग्राम शुरू में बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं लेकिन एंड पे हलचल मचती है, साथी अपनी जगह छोड़ देते हैं, खाना खुल जाए वो कहते हैं अब हमने भी खाना खाना है। यही वक्त होता है जिस वक्त में अबतरी फैलती है। तो यहाँ इन आयतों में यही समझा दिया गया कि तुमने अपनी जगह नहीं छोड़नी थी, तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को सुनना था और मानना था। अब जब माल की बात हुई तो आप देखिए, नाम लेकर यहाँ रिबा की बात हुई। पिछले बारे दूसरे में हमने क्या पढ़ा था, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा। तो रिबा सूद को क्यों कहते हैं? आप देखिए, एक होती है ग्रोथ जो बहुत अच्छी, जैसे बच्चा आज छोटा है, एक महीने में और बड़ा होगा, एक साल में और बड़ा होगा। लेकिन अगर एक हाथ है, ये छोटा सा हाथ बड़े हाथ में बदला, ठीक है, लेकिन इस हाथ के ऊपर अगर एक गिल्टी निकले और वो गिल्टी बढ़ती जाए तो वो अब नॉर्मल ग्रोथ है ना। तो रिबा या सूद या इंटरेस्ट जिसका आप नाम लेते हैं, वो एक किस्म की अनऑथराइज्ड किस्म की गिल्टी होती है। बाहर लगता है कि माल बढ़ रहा है लेकिन अंदर से वो गिल्टी पूरे जिस्म का खून निचोड़ रही होती है। तो सूद के बारे में चंद अहादीस पीछे मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, लेकिन आज सिर्फ इस सोच के साथ कि सिर्फ अल्लाह की बात दिलों को बदल सकती है, वो हम सुन चुके। हदीस की बात भी दिल को बदलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौके पर गए तो आपको कुछ लोग दिखाए गए कि वो खून की नहर में डूब रहे हैं, बड़ी मुश्किल से किनारे पे पहुंचते हैं और वहां से फिर कोई पत्थर मारकर उनको उस खून में डुबो देता है। पूछा जिब्राइल से, ये कौन लोग हैं? फरमाए, सूद खाने वाले और खिलाने वाले। फिर आपको दिखाया गया कि कुछ लोग हैं, उनके पेट बड़े बड़े मटकों के हैं, शीशे के बने हुए हैं और उनके अंदर सांप दौड़ रहे हैं। पूछा, ये कौन है? फरमाए, ये सूद खाने खिलाने वाले हैं। याद रखिए, सूद छोटा इशू नहीं है। अकीदे में सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है और माली मामलात में सबसे बड़ा जुर्म सूद है। आप इसको एक नाजायज बच्चा कह सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूद के 36 गुना है। इसमें सबसे हल्का यह है कि कोई अपनी माँ के साथ जिना करे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा को इससे बचा कर रखे हर रंग से। फिर आप देखिए, अतीउल्लाह और अतीउर रसूल की बात इसी आयत में आ गई। तो क्या पता चला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे तो बात बनेगी, और उसके बाद फिर मेरी आपकी मोटिवेशन के लिए जो खूबसूरत चीज़, वसारी विला मगफिरत मिन रब्बिकुम, और दौड़ कर चलो इस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ चाहती है जिसकी वसत जमीन व आसमान के बराबर है। पीछे क्या था? फस्तबिकुल खैरात। अभी थोड़ी देर पहले क्या गुजरा? युसारिऊना फिल खैरात। यहाँ क्या आ गया? सारी इला मगफिरत है। आपको पूरे दीन को और पूरे कुरान को पढ़कर जो फीलिंग आएंगी, जो मुझे बहुत आती हैं, दौड़ लगाओ, भागो, बी एक्टिव, प्रोएक्टिव बनो, सुस्तियाँ छोड़ो, नकम्मे ना बनो, अपने आप को अंडर एस्टिमेशन ना करो। आज एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर हमारा ये कि हम कर ही नहीं सकते, आता ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। आप कहते मैं चल नहीं सकती, खुदा ना खास्ता पीछे चोट लगते हैं। देखिए, हमें याद भी नहीं रखा घुटने में दर्द था कि टांग में दर्द था, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आप कहते हैं कि मैं तो ये दो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, नीचे कॉकड़ो जा जाए। देखिए, उछल के आप पहुँचेंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा कि मेरा घुटना काम नहीं करता। बेअमली छोड़ दो, बी प्रोएक्टिव। आज ये टाइम वेस्टिंग में बहुत बड़ी चीज़ है, मुझसे होता ही नहीं है, मैं कर नहीं सकती। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम ज़रा सी कोशिश तो करो। जिसको इतनी प्यारी जन्नत सामने नज़र आ रही हो, क्या वो उसको छोड़ सकता है? अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें उस जन्नत के लिए तैयारी करने वाला बना दे। फरमाए, ये किसके लिए तैयार की गई? वो इद्दत लिल मुत्तकीन, और वो इन खुदा तर्स लोगों के लिए तैयार की गई जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं। ये नहीं कि बुरा ख्वाब आ गया तो माल खर्च कर दिया, किसी की जॉब चली गई तो सदका दे दिया, कोई बीमार हो गया तो कुर्बानी देने चले गए। हर हाल में देखिए, अल्लाह को तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन गरीबों को आप देते हैं, क्या सिर्फ उनको उस दिन रोटी चाहिए जिस दिन आपको बुरा ख्वाब आ जाए, जिस दिन आप पे कोई मुसीबत टूट जाए उस दिन सदके के बकरे का वो गोश्त खाएं? इंसान होने के नाते उसको हर दिन खाना है, तो हर हाल में कीजिए। जैसे आप अपने बच्चों के लिए क्या किसी खास मौके पे खाने का इहतमाम करते हैं? आपको होता है रोज़ उनको खाना चाहिए, अच्छा बना लें, हल्का बना लें, जो भी करें। तो बिल्कुल याद रखिए, नेकियों को कॉन्स्टेंटली करना, ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के दौर की, और अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। ख्वाह बदहाल हों या खुशहाल, यानी हाथ तंग हो या हाथ खुला हो, वो हर हाल में करते हैं। जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, काज़िमीन अल-ग़ैज़। आप देखिए, जन्नत की कीमत गुस्से पे काबू पाना। याद रखिए, जब तबीयत में चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है, तो छोटी छोटी बात में बंदा आकर अपने आप को नेकियों से महरूम करता है। पारे के थीम के साथ देख लीजिए, दीन के काम से महरूम कर देने वाली चीज़ अक्सर हमारा गुस्सा होता है, बर्दाश्त नहीं है। मैं नहीं ऐसे लोगों के साथ काम कर सकती, मुझे उनकी ये आदत नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। आप पढ़ के देखिए, 23 साल नबी सल्लम के सहाबा कराम हज़रत उमर फारूक इंतहा से ज़्यादा गुस्से वाले थे। उनका नाम लेकर माएँ अपने बच्चों को डराती थी कि चुप कर जाओ नहीं तो उमर को बुला लूँगी। लेकिन जब आप उनको अपने साथियों में देखते थे, जब नबी के सामने देखते थे, वो कहते हैं कि हो रस्म हक को बातिल तो फौलाद है मोमिन। वो हल्का यारा तो रेशम की तरह नरम। आगे आयतें आने वाली हैं, याद रखिए, तबीयत की नरमी, तबीयत की खूबसूरती बंदे में खैर लाती है। गुस्सा, हिजान, हर एक से बदगुमान, हर एक ही बुरा, सारे ही खराब है, सारे ही आपके खिलाफ है, सारे ही आपके दुश्मन है। ये मैंने जुमले क्यों बोले? कुछ लोग सोचते ही है फला मेरा दुश्मन, फला मेरे खिलाफ, वो मुझे एक आंख नहीं देख सकता, वो मेरे खिलाफ बात करता है, वो मेरा घर तोड़ रहा है। भाई अल्लाह के बंदो, आप इतने अहम हो कि सारी दुनिया आपकी दुश्मन हो गई, सारे दुश्मन छोड़ के उन्होंने आपको पकड़ लिया कि आपको बस उन्होंने दुखी करना है। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी नेगेटिविटी है। आप पॉजिटिव बन के देखिए, कल जिनको देखकर आपको गुस्सा आता था, आपको उन पर प्यार आने लगेगा। तो काज़िमीन अल गैज़ बहुत जरूरी है। बाकी रह गई बात, इंसानों की दुनिया में बुरे लोगों से वास्ता पड़ता है। जिसका ईमान मजबूत होगा ना कि मुझे अल्लाह हर चीज का बदला देता है, वो दूसरे से गालियां सुनकर भी मुस्कुराएगा। क्या ये गालियां मुझ पर नहीं तुम पे बरस रही हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा कि जब कोई गाली देता है तो वो उस पर ना पड़े तो कहने वाले पे पड़ती है। ईमान मजबूत करें तो लिखिए, अगर आपको बात बात पे गुस्सा आता है, अगर आपको छोटी छोटी बातें चुभती हैं, तो अपने ईमान को जाकर चेक कीजिए। पक्के ईमान वाला, बड़े ईमान वाला, अल्लाह पे नजरें लगाने वाला कभी गुस्से में नहीं आता। आ जाए तो बस उसको पी लीजिए। इसके ऊपर एक पूरी वर्कशॉप है एंगर मैनेजमेंट के नाम पे, और 2010 का जो दौरे कुरान था इसी पारे में, ये जो फोर्थ पारा है, आप सिर्फ इस फोर्थ पारे का तर्जमा किसी मौके पे अगर सुने तो उसमें एंगर मैनेजमेंट पे बहुत कुछ बोला गया कि गुस्से पे कैसे काबू पाया जाए, बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए, क्योंकि आज बहुत बड़ा एक टाइम वेस्टर हमारा गुस्सा भी है। लिख के देख ले, गुस्से की वजह से काम नहीं हो रहा। गुस्से में आ जाऊं, अच्छा कुछ लोग कहते हैं गुस्से में मैं खूब काम करती हूँ, फिर इसीलिए लोग उनको गुस्सा दिलाते हैं। एक सिस्टर कहती है जब गुस्सा आता है सारा घर साफ कर देती हूँ, तो ये गुस्सा तो बहुत अच्छी नेमत हो गया। तो हमेशा देखिए, कोई चीज जो मेरे मकसद से मुझे दूर करती है, मुझे उसको अपने से दूर कर देना इंशाल्लाह, और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं। आप कहते हैं मैं तो नहीं करती, तो ना कीजिए, बोझ अपने कंधों पे लेकर फिरिए। आप देखिए, लोगों को माफ ना करके हम सबसे ज्यादा जुल्म अपने ऊपर करते हैं। किसी को 5 मिनट चलना पड़े, 5 किलो लेकर वजन चल पड़ेगा, लेकिन अगर किसी को 1 मील तक चलना पड़े और 4 किलो वजन लेना पड़े तो उसके कंधे थक जाएंगे। ये दूसरों को माफ ना करना, नेगेटिविटी, गुस्सा, ग्रज और हर वक्त ही कुड़ते जलते रहना, ये कोई बहुत ज्यादा अच्छी आदत नहीं होती। ऐसी उम्मत से भी फिर अल्लाह ताला काम नहीं लेता। और आज आप देखिए, बीइंग अ नेशन, उम्मत का गुस्सा कहाँ पड़ा हुआ है? बात बात पे झगड़ा, टांगा आगे आ गया झगड़ा, साइकिल वाले से झगड़ा, दूध वाले से झगड़ा। और समटाइम तो फील होता है ये सारे लड़ते क्यों हैं। आप किसी ऑफिस में कोई काम कराने चले जाओ, पहले तो वो आपकी खूब बेइज्जती करेंगे कि आपने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया, ये तो मेरी चाय का टाइम था। फिर बाद में जरा सा आप थोड़ी बात करें ना तो नरमी होती। हर बंदा क्यों गुस्से में आज हमारे मुल्कों में? क्योंकि काम वक्त पे नहीं करते, देर से उठे, जब दुकान ही 12 बजे खोली तो गुस्सा तो आना ही है, दिन तो चला गया। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियों के मामले फरमाए। फरमाए ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फुहश काम इनसे सरजत हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो फिर इन्हें फौरन अल्लाह याद आ जाता है और इससे वो अपने कसूरों की माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर सकता है? देखिए कितना प्यारा अंदाज है कोई जो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे? और वो इससे अपने कसूरों की माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह को माफ़ करता है? और कभी जानते बूझते अपने किए पर इसरार नहीं करते। ये भी बड़ा प्यारा नुक्ता है कि अनजाने में गलती हो सकती है लेकिन जानते बूझते इंसान गलती नहीं करता। ऐसे लोगों की जजा इनके रब के पास ये है कि वो इनको माफ़ कर देगा और ऐसे बागों में इनको दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। अल्लाह हमें उन नहरों वाली जन्नत में दाखिल कर दे। कैसा अच्छा बदला है नेक अमल करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत दौर गुजर चुके, ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि इन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकाम और हिदायत को झुठलाया। ये लोगों के लिए एक सरीख और साफ तंबीह है, और जो अल्लाह से डरते हों इनके लिए हिदायत भी है और नसीहत भी है। अब आप देखिए कि ये सारी चीज़ें पढ़कर दोबारा वापस आ जाइए, किस चीज़ पे हाईलाइट कीजिएगा इस आयत को, आयत 129, वला तहिनु वला तहसनु वअंतुम अलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। दिल शिकस्ता न हो, गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। आज के इस पारे का टाइम वेस्टर है गम करना। बिलीव मी, कुछ लोग जैसे ईद मनाते हैं ना वैसे गम मनाते हैं, और जैसे बिल्ली के बच्चे को पालते हैं ना ऐसे गम के बच्चे को पालते हैं। उनका फेवरेट शौक, उनका पसंदीदा मशगला दुखी नजर आना, सैड दिखना, रोती शक्ल, और खुद पे रहम खाते हुए। उनका दिल करता है जिधर मैं जाऊं लोगें इससे ज्यादा मजबूर, इससे ज्यादा बिचारी, इससे ज्यादा दुखी कोई औरत नहीं दुनिया में। द सैडेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। भाई आप इस दुख को पाल कर क्या करेंगे? और सोचते क्या किसे हमदर्दी मिलेगी? कोई हमदर्दी नहीं मिलती। गम वाला चेहरा सिर्फ एक हस्ती को अच्छा लगता है जिसने गम दिया। टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह के आगे झुकिए, रोइए, बोलिए। उसको सब पता है कि आपके दिल में क्या, पर वो आपसे सुनना चाहता है। लोग दुखी चेहरों को पसंद नहीं करते। हमारे यहाँ कहते हैं, रोता बच्चा माँ का, हंसता बच्चा सबका। सब उस वक्त बच्चे को लाड करेंगे जब हंस रहा, रोएगा कहेंगे माँ किधर है इसकी, बुलाओ इसको। अब आप देखिए, आज उम्मत होने के नाते भी हम दुखी उम्मत है। कुछ नहीं होना, सब खा गए, सब लूट गए, ये मुसलमान तो कभी नहीं सुलझेंगे, इनके तो नसीब में है ही नहीं। अब ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें करने वाले चाहे तो पाकिस्तान के खिलाफ करें, चाहे इस्लाम के खिलाफ करें, याद रखिए कि वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, वो दुश्मन है। तो गम को निकालिए। हमारे यहाँ अल्लाह के हुक्म से कोई गम आ जाए, कोई फौत हो गया, सारा खानदान जमा, दूसरे शहरों मुल्कों से टिकट कटा कर जाते हैं गम मनाने। भैया आप क्या जा रहे हैं? हमने तो सुना था लोग पाकिस्तान ईद मनाने जाते हैं। नहीं, हम गम मनाने जाएंगे, डेड बॉडी को लेकर जाएंगे, साथ 10 रिश्तेदार जाएंगे, बल्कि 20 भी जाएंगे। 50,000 करोड़ को आग लगा देते हैं सिर्फ वहां जाके गम मना। मैयत भी आपके पास पड़ी हुई है, रो लें जिधर रोना है, नहीं उधर बहनों भाई उनके गले मिलकर रोएंगे। फिर लोग कहेंगे लो जी ऐसी औलाद है, ये साथ नहीं आई। और यकीन करें इस वक्त उम्मत का बहुत सारा वक्त गम मनाने में लग रहा है। तीसरे दिन तक बैठेंगे, फिर 10वें दिन तक गम मनाएंगे, फिर महीने का गम होगा, फिर 40वें का गम होगा, फिर 1 साल की बरसी का गम होगा, फिर ईद आ जाएगी, ना 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 ईद नहीं करनी, गम मनाना है। ये कोई गम मनाने की चीज़ है? देखिए, गम अंदर रखने की चीज़ होती है, इसको अंदर रख कर अपने अंदर गर्मी पैदा करें। तो आज के टाइम वेस्टर में इस पर हमने गौर करना है। क्या मैं अक्सर दुखी रहती हूँ? किसी की प्लेट टूट जाए गम मना रहे, हाय दुखी, सर में दर्द है, डिनर की प्लेट टूट गई। भाई वो प्लेट तो वापस आ जाएगी, या आपकी ब्रेन की अगर कोई नस फट गई तो ये वापस नहीं आनी। बच्चे नहीं कोई काम खराब कर दिया, बच्चे को भी रुलाया, खुद भी दुखी हुए और उस चीज को गम बनाया। गम निकाल दीजिए, खुश रहें, हशाश बशाश रहें। आपको देखकर लोग कहें आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं है, आपको कोई खजाना मिल गया। अब गम मनाई हुई बीवी किस मर्द को अच्छी लगेगी? फिर कहते हैं आते ही बड़ी देर से, वो कहते हैं हम दुआ करते हैं, हम सोई हूं फिर आए। अब गम वाला चेहरा जो लेकर आपने उनका इंतजार करना है, और प्यार का इजहार भी हम गम से ही करते हैं, गुस्से का इजहार भी हम गम से ही करते हैं। तो याद रखिए, बड़ा गम लगाए, खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अल्लाह के रास्तों के गम लगे हुए। ये बड़ा गम आपको सब छोटे छोटे गमों से बेनियाज कर देगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस गम को अपनी ताकत बनाए, ना कि अपनी कमजोरी बना सकें। फिर इसमें एक और बात भी पता चली कि ईमान के साथ अल्लाह की मदद आती है। आज भी उम्मत मुस्लिमा बहुत खुशकिस्मत है। याद रखिए, कुछ लोग इतना गम में डालने वाला जुमला बोलते हैं, कहते हैं आज के मुसलमानों से काफिर अच्छे। अस्तग़फिरुल्लाह, कभी एक मुसलमान ये सोच भी नहीं सकता। मुसलमान नमाज नहीं भी पढ़ता ना, वो फिर भी काफिर से अच्छा। मुसलमान की सड़क टूटी हुई है, उसका घर टूटा हुआ है, वो फिर भी काफिर से अच्छा, क्योंकि जिसने रब को पहचान लिया उससे खुशकिस्मत कौन होगा। तो ये जुमले बोलकर भी बाज़ दफ़ा लोग अपने आप को बहुत ज्यादा दूसरों का हमदर्द साबित करते हैं।